सी बूंदे अमृत की दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 2011। इस मुरली का मुख्य विषय क्या है? मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाना, शुभ भावना शुभकामना रखना, संस्कार मिलन की रास करना तथा प्रभु के संग का रंग लगाकर सच्ची होली मनाना। प्रश्न दूसरा, सच्ची होली किसे कहा जाता है? तो होली पर हमने अनगिनत मुरलियां सुनी है और सभी मुरलियों में कौन कौन सी बातें होती है? पहली, रंग लगाना, रंग। दूसरा, जलाना, बर्निंग। किसको जलाना? यहां से चालू करेंगे, सारी पॉइंट्स बता दो। एक तो जो पास्ट हो गया उसको भूल जाना, अतीत को फुल स्टॉप, एक होली का अर्थ। दूसरा, प्योर बनना, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, पवित्र होली अर्थात ब्रह्मचर्य। तीसरा, जलाना, पुराने संस्कारों को जलाना। चौथा,
परमात्मा संग के रंग में,
संग के रंग में रंगना। और पांचवा, बाजू में, नेक्स्ट,
मिलन बनाना।
होली परमात्मा की हो गई समर्पण। और
हो गया
हूँ, बोल दिया। माइक तो आ गया पर वो माइक तो चालू है। उसको मालिक की तलाश है। तो संसार में होली क्यों मनाते हैं? उसके 7 कारण हैं। विट्ठल भाई, प्रह्लाद वाला कारण छोड़कर, एक कारण प्रह्लाद,
एक दूसरे के साथ मिलन मनाने के लिए, यानी वैर भाव है, छुटता है उससे होली जलाने। और एक
ठीक है, पहला कारण
परंपरा से।
और
खुशी के लिए संसार के लोग होली जम मनाते।
नहीं नहीं, वो तो सभी त्योहार मनाते। वो इधर का नहीं, संसार में क्यों मनाते हैं वो कारण पूछ रहे। अरविंद भाई,
गिले शिकवे दूर करने के लिए, वो भी आपस में
कारण, हिस्टोरिकल रीजंस, सांस्कृतिक कारण।
और प्रह्लाद की,
हाँ, वो प्रह्लाद की कहानी तो एक कारण है, वो बोल दिया, उसके अलावा पता नहीं।
बसंत ऋतु के आगमन,
हाँ, सबसे पहला कारण तो एक तो कारण है प्रह्लाद की स्टोरी जो सबको पता है, होलिका दहन, होलिका, हिरण्यकश्यप की कहानी, हिरण्यकश्यपु की कहानी, अन्याय पर न्याय की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अविश्वास पर भक्ति की जीत, डाउट पर विश्वास की जीत, रात्रि पर अंधकार पर प्रकाश की जीत। ये कारण वन। दूसरा कारण सुशील भाई ने बताया है, वसंत ऋतु का आगमन। जब वसंत ऋतु आता है, वेलकमिंग स्प्रिंग, तब होली मनाई जाती है। अर्थात पूरी सृष्टि में चहल पहल होती है, सारी सृष्टि का नवीनीकरण होता है, सारी सृष्टि खिल उठती है, जैसे फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली, वातावरण बहुत सुंदर, इसका प्रतीक है होली। तो सेकंड रीजन इज वेलकमिंग स्प्रिंग। तीसरा कारण, तीसरा कारण डॉक्टर गायत्री, मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, बोलेंगे तो आवाज आएगा, माइक अपने आप से नहीं बोलता है। हाँ, तीसरा कारण है रति और कामदेव। कामदेव ने क्या किया था, शिव की तपस्या भंग कर दी थी, तीसरा आँख खोला और कामदेव बस, कामदेव की पत्नी रति 40 दिन तक तपस्या की और 40 दिन की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए। 40 दिन आफ्टर वसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड एज कामदेव को सूक्ष्म रूप से पुनः जागृत किया और रति को वरदान दिया कि कामदेव आज से हर स्त्री पुरुष के मन में निवास करेगा, काम विकार। तो उसका जो सेलिब्रेशन है वो है होली। तीसरा, चौथा,
नए अनाज का,
नए अनाज, परफेक्ट। अगला कारण है हार्वेस्ट, अनाज, जो किसान नया अनाज जो आता है उसकी, उसका धरती को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, नया अनाज, बार्ली, ज्वार, राई, सब कुछ जितना भी अनाज है उसका यादगार है होली। अगला, राधा कृष्ण, क्या ये राधा कृष्ण का क्या, बरसाना, लठमार और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो यशोदा मैया उसको क्या कहती है, जाओ उसी के पास और उसको कहो कि जिस जो रंग तुमको पसंद है उससे मुझे रंग दो, राधा के पास जाकर, तो वो उसको रंग देते हैं और वो युगल मूर्त होते हैं और उसका जो सेलिब्रेशन है वो है होली। तो पहला कारण है प्रह्लाद, दूसरा कारण है रति और कामदेव, तीसरा कारण है कृष्ण और राधे, चौथा कारण है वसंत ऋतु का आगमन, छठवां कारण है, पांचवा कारण है अनाज फसल, अगला कारण नवीनीकरण, न्यूनेस, अर्थात संसार में इस त्योहार के मनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि जो रिश्तों में कड़वाहट आ गई है उसका क्या करो, नवीनीकरण, एक दूसरे को माफ कर दो, माफी मांग लो, पुरानी बातों को भूल जाओ और नए सिरे से सब कुछ चालू करो, गले लगो, गले पड़ जाओ नहीं, गले लग जाओ। तो ये एक, और अंतिम कारण, सात कारण है होली के संसार में, सामाजिक भेदभाव मिटाना, वो वैसे सातवें छठवें कारण में आ चुका है परंतु यहाँ थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य। ये जो रंग होते हैं वो नेचुरल कलर यूज किए जाते थे पहले, अभी कृत्रिम हो गए हैं, अभी आर्टिफिशियल हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन, आई इरिटेशन, इसलिए गवर्नमेंट में बहुत सारे रंगों पर बैन भी किया है दिल्ली में। तो उसका एक कारण है सातवा हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य, क्योंकि सृष्टि परि वो ऋतु परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे आग, दहन, ये अशुद्धि को मिटाता है। तो सातवां कारण जो है वो हेल्थ अवेयरनेस या प्रकृति हमें स्वास्थ्य रखने के लिए ये त्यौहार मनुष्य मनाते हैं। और ज्ञान में कारण कौन कौन से हैं होली के, अर्थ जो सारी मुरलियों का सार, सबसे पहला होली अर्थात प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य फिर से धारण करना अर्थात ब्रह्मचर्य के मार्ग में जो जो बाधा है उसको हटाना अर्थात होली मनाना, जितने डिजिटल कारण है, उन सबको हटा देना। अपवित्र दृश्य देखना, अपवित्र बातें सुनना, अर्थात नॉन वेजिटेरियन फूड, पहला कारण प्यूरिटी। दूसरा कारण होली, जो हो गया सो हो गया, अभी कब तक उसको पकड़ के रखे। आकाश से कितने तारे गिर गए, आकाश को कोई दुख है नहीं। मधुबन से कितने फूल मुरझा गए मधुबन में, मधुबन को कोई दुख है नहीं। मदिरालय में कितने प्याले टूट जाते, मदिरालय को कोई दुख है नहीं। तो बीत गई सो बात गई, उसका क्या करना है, जो गया सो गया, उसका क्या दुख मनाए, के विषय में क्या सोचे। कविता है ना ऐसी, कौन सी कविता है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, कौन सी कविता है, जो बीत गई तो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना यह बेहद प्यारा था, पर डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, आकाश के चेहरे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं वो छूटेगा, और जब छूट जाता है तो क्या होता है, आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है, वेदना का अनुभव होता है, स्वीकार ही नहीं करती है, ये चला गया, ग्रीफ रिएक्शन होता है मेडिकल। ग्रीफ रिएक्शन की 5 स्टेजेस होती है, अगर पति पत्नी बच्चे स्वजन मित्र संबंधी जिससे हमने बहुत प्रेम किया या करते थे वो चला गया, तो व्यक्ति ग्रीफ रिएक्शन के थ्रू गुजरता है। सबसे पहला स्टेज डिनायल, स्वीकार ही नहीं करता है कि वो चला गया, वो है, उसके लिए चाय बनाते थे जैसे अभी तक बना रहे थे, उसके लिए माँ नाश्ता बनाती थी बेटे के लिए, बेटा चला गया, एक्सीडेंट हो गया, 10 साल का था, पर उसके लिए टिफिन रोज बनता है, क्योंकि माँ को स्वीकार ही नहीं है कि वो चला गया। डिनायल फर्स्ट स्टेज, और ये स्टेज कई लोगों की कई सालों तक चल सकती, जितना गहरा मोह था उतना गहरा डिनायल होगा, स्वीकार ही नहीं करती कि ये चला गया। और वो केवल बच्चे की भी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपके सब्सक्रिप्शंस भी हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक्स भी हो सकते हैं जो डिसलाइक में कन्वर्ट हो गए, एनीथिंग, घर भी हो सकता है जो चला गया, स्वीकार ही नहीं करती आत्मा की वो चला गया। दूसरा एंगर, क्रोध आता है, किसकी वजह से, डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं, हॉस्पिटल ने ठीक से देखा नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ ने ठीक से नहीं देखा, इन्होंने गलती कर दी, दवा गलत दे दी, या घर वालों ने जल्दी लेके नहीं गए, या घर वालों में से किसी एक व्यक्ति ने, एंगर क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध लंबा चलता है, कई सालों तक, 10 साल 20 साल भी चल सकता है, कि घर का कोई एक व्यक्ति है, मेरा बड़ा भाई, उसने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मेरे पिताजी नहीं जाते थे, मैं तो बाहर था, उसको ध्यान रखना चाहिए था, एंगर। तीसरा बार्गेनिंग करता है, चलो ठीक है सौदा, ठीक है अभी गया तो अभी क्या कर सकते, दुख है, स्वीकार नहीं किया है, बट एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा, अभी कई साल बीत गए, अब कितना दिन दुखी रहे, दुखी रहे, अभी अपने भी तो काम करने हैं, पैसा है, संसार है, जो बच्चे लोग हैं उनको भी देखना है, बार्गेनिंग। नेक्स्ट, फिर व्यक्ति उदासी में चला जाता, मृत्यु के कुछ समय बाद, पहले दिखाता है कि सब ठीक है सब ठीक है, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, और ये डिप्रेशन का फेज इतना सूक्ष्म होता है, कईयों का तुरंत आ जाता है, ये सब में जो नहीं जाते वो सीधा डिप्रेशन में चले जाते, डेथ हो गई किसी की घर पे, डिप्रेशन। लास्ट एक्सेप्टेंस, लास्ट क्या होता है, फिर जाके कई विकार करते हैं। सबसे पहला फेस बी, दूसरा एंगर, तीसरा बार्गेनिंग, तीसरा डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। इसको मेडिकल में निमोनिक है डैबडा। डैबडा, डैबडा से गुजरता है व्यक्ति स्वजनों की मृत्यु के बाद ग्रीफ रिएक्शन में, निकल नहीं पाता है उससे बाहर। उसको कितना भी काउंसिलिंग करो, कुछ भी करो, समझाओ, परंतु हमने ऐसी भी आत्माएं देखी है, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, ये ऐसे कई सारे कुमार देखे हैं जो अपनी माताजी को हॉस्पिटल में लाते थे। और एक कुमार को हमको याद है, लाते थे, फिर माताजी घर चली गई, फिर गांव में थी, कई वर्ष वहां थी, और अचानक माताजी की मृत्यु हो गई। तो हमने उस भाई को फोन किया, कहाँ हुआ? तो उसने कहा एयरपोर्ट पे हूँ। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, माताजी ने शरीर छोड़ा, इसलिए जाना है। कब छोड़ा? कल रात। परंतु आवाज फिर, कोई ऐसा एक प्रभाव नहीं उसमें, और वहां गए भी और सेवाएं करके भी आ गए। तो ऐसी भी बहुत सी आत्माएं जो अचल अडोल रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको प्यार नहीं है। तो होली अर्थात जो हो गया वो हो गया, ये एक दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ होली भगवान की हो गई। नेक्स्ट अर्थ रंग में रंग जाना, परमात्मा रंग में रंग जाना। पर बोलो कितने तारे टूटे, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में वह था एक कुसुम, हे उस पर नित्य न्योछावर तुम। वह सूख गया सो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। दुखी कितनी इसकी कलिया, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, कितने तो मधुबन से ही चले गए। थूल मधुबन से भी कितने चले। ये यहाँ जो मधुबन की बात हो रही है वो बगीचे की बात हो रही है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया सो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछता आता है, जो बीत गई सो बीत गई। मृदु मिट्टी मिट्टी के है बने हुए, मधुकट फूटा ही करते, लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही करते। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे है वो मधु लूटा ही करते। वह कच्चे पीने वाले है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु के से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गया सो बीत गया। जो सच्चे पियक्कड़ होते वो प्याले टूटने से दुखी थोड़ी ना होते, उनको पता है अभी और है, ये तो केवल प्याला टूटा है। और होली अर्थात रंग, होली अर्थात जलाना, पुराने संस्कारों को खत्म करना, अर्थात पुराने एडिक्शंस। यदि हमारे एडिक्शंस अब तक चल रहे हैं, अर्थात होली हमने नहीं मनाई, हमारी पुरानी आदतें अब तक चल रही है, अर्थात होली हमने नहीं मनाई। तो होली अर्थात ब्रह्मचर्य, होली अर्थात प्रभु प्रेम, होली अर्थात पुराना समाप्त। ये सारे ग्रीफ रिएक्शन से सीधा एक्सेप्टेंस पे पहुंचो। जितना जल्दी एक्सेप्टेंस आएगा उतना जीवन स्थिर होगा। अगर एक्सेप्टेंस को 10 साल लगते हैं तो जो व्यक्ति जीवन में था और वो चला गया, चाहे वो कोई स्वजन ना था परंतु मन में लगाव था उसके प्रति, तो वो भी एक सूक्ष्म ग्रीफ, स्पिरिचुअल ग्रीफ रिएक्शन से भी गुजरते हैं व्यक्ति। तो नेक्स्ट, तो इस मुरली का विषय क्या है? मनसा द्वारा प्रकृति को तत्वगुणी बनाना, शुभ भावना शुभकामना रखना, संस्कार मिलन की रास करना। हाँ, ये भी है संस्कार मिलन की रास, अर्थात जो दूसरे स्वभाव संस्कार के लोग हैं आसपास, उनके साथ एडजस्ट करना, दिस इज होली। तथा प्रभु के संग का रंग लगाकर सच्ची होली। प्रश्न दूसरा, सच्ची होली किसे कहा जाता है? उत्तर, पुराने संस्कारों को जलाकर परमात्मा के संग के रंग में रंग जाना ही सच्ची होली। तीसरा प्रश्न, परमात्मा संग का रंग सबसे श्रेष्ठ क्यों है? अच्छा, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ है इसलिए संग का रंग ये श्रेष्ठ। और हाँ, ये रंग अगर चढ़ गया तो दूसरा फिर कोई उतार नहीं सकता, अविनाशी रंग। और लगाने वाला कौन है? आधा कल्प के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए लगता है। पक्का रंग, ये रंग कैसा है? पक्का, कितना भी धो
टूटता ही नहीं है,
टूटता नहीं, कोई मिक्सचर नहीं है इस रंग। और रंग दूसरा कोई रंग लगता नहीं, ये निकलता नहीं, दूसरा कोई लगता नहीं। और अविनाशी है, और शुद्ध है, पवित्र है, गहरा है। इस रंग का रंग कौन सा है? द कलरलेस कलर। ये कलर कैसा है?
जिसमें सारे कलर,
रंगहीन रंग,
सारे समाये हुए,
जिसमें सारे रंग समाये,
और कोई दूसरा रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता।
वो बोल दिए, दूसरे जो पहले के रंग थे वो सारे निकल जाते। हाँ, ये रंग के एक्सपायरी नहीं हो, और उसके वो नहीं है, क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स, आंख में इरिटेशन, या फिर वो चेहरा खराब, और गंदा नहीं करता है, ये सुंदर बनाता है, और स्मेल अच्छी है उसकी। अभी हमारा वो जो एग्जाम का गीत है वो कौन सा है? एमैट का गीत, ये परीक्षा नहीं, ये परीक्षा नहीं, ये परमात्म संघ का उत्सव है। परमात्म संघ का उत्सव है परीक्षा। तो कल हमारी एमैट एग्जाम हुई, उसमें मधुबन से इस बार दो लोग हैं जिनको फुल मार्क्स मिले, बाकी सबको 49 वाले बहुत है, पर दो ही है जिनको फुल है, आशीष भाई और दीपाली बहन। सब ताली बजाएंगे। 50 out of 50, फर्स्ट आशीष भाई, दीपाली बहन, बाकी सब 49 49 49 49 पे तो ढेर सारे है, पर 49 और 50 में अंतर होता है बहुत बड़ा। तो ये परीक्षा नहीं, क्या है ये? परमात्म संघ का उत्सव है। तो परमात्मा संघ का रंग सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वह आत्मा को डबल पवित्र, डबल पवित्र क्या होता है? डबल पवित्र क्या होता है? डबल ताजदारी और श्रेष्ठ भाग्यवान बना देता है। माइक कैसे चलाना उसका ट्रेनिंग आपने दिया है क्या सबको? अभी
जब,
दे दो।
जब ही बोलना है तो उसकी स्विच चालू करना है, और नहीं बोलना है तो बंद करके रखना है, बार बार आवाज आती है।
ठीक है, समझ में आ गया सबको?
स्विच है माइक में पावर, 5 सेकंड उसको प्रेस करके रख, लाइट बंद हो जाएगी, चालू हो जाएगी।
डबल पवित्र क्या होता है, कौन बताएगा? वेट, आशीष भाई, डबल पवित्र क्या होता है?
100 नंबर वाले
जो टॉपर जो है उनको ही क्वेश्चन पूछेंगे अब सारे।
टॉपर अभी अलर्ट रहे।
नहीं नहीं, आपको पूछा गया है।
ऑप्शन, डबल पवित्र आत्मा और
दोनों पवित्र। डबल ताजधारी मतलब क्या दीपाली बहन? माइक है आपके हाथ में, अभी इंस्ट्रक्शन दिए माइक की,
देशों का पालन किया जाए
जल्दी। इसको भी लेते हैं, जो नहीं चलते हैं इसको निकाल के रखो बाहर।
तूल और पवित्र
जबल ताजधारी अर्थात क्या? ये सारा भूल गए। डबल ताज क्या होता है बताओ कुणाल भाई?
एक जो स्वर्ग में मिलेगा वो
पवित्रता का क्या ताज होता है?
लाइट का ताज होता है, उसमें
कैसा
चमक होती है।
पर ताज तो इसको कहा जाता है जो ऐसे रखा जाता है
जैसे देवताओं के पीछे से एक।
हाँ तो वो ताज कैसे हुआ? ताज तो ये है जो ऊपर रखा रहता है सिर। ओम शांति। दूसरा इधर नहीं मनी भाई,
आत्मा सत्व प्रधान होता है।
हाँ, तो वो समझ में आ गया।
वो
भी समझ में। ऑरा, तो डबल ताज अर्थात एक स्थूल ताज और दूसरा ऑरा।
जिम्मेवारी का ताज
ऑरा। कौन सा
जिम्मेवारी का
ताज? संगम का है वो तो अलग है। तो डबल ताजधारी, तो ये जो ताज है स्थूल ठीक है और सूक्ष्म ताज। सुशील भाई ये जो ताज है ये कब से बनाना चालू हुआ?
इसका ढांचा तो संगम पर ही रख दिया गया।
संगम की बात नहीं चल रही है, ऐतिहासिक हिस्ट्री में कृष्ण को ताज ऑरा दिखाया है, राम को ऑरा दिखाया है, देवी को ऑरा दिखाया है, क्राइस्ट को, बुद्ध को, महावीर को। तो प्रश्न है चित्रों में चित्रकारों ने ऑरा कब से बनाना चालू किया? ऐतिहासिक द्वापर युग से तो बनाना ही चालू किया। द्वापर युग में कब से?
द्वापर युग के कितने सालों बाद
और कैसे ये स्टार्ट हुआ? ये ऑरा बनना पेंटर्स ने कहां से चालू किया? आर्टिस्ट ने ऑरा कब से बनाना चालू किया?
इंडियन निखिलेश भाई बता सकते
हैं। इधर है पीछे है निखिलेश भाई। हाँ डबल ताज जब सिकंदर भारत में आया था और सिकंदर चला गया, सिकंदर की मृत्यु हो गई जाते जाते लगभग ईसा के 300 वर्ष पूर्व। गंधार बीच में पड़ता है, गंधार केंद्र था आर्टिस्ट का और आर्टिस्टिक एक्सचेंज हुआ वहां पर। वहां पर इधर के भारत के कलाकार उधर जाते थे, उधर के कलाकार इधर आते थे। ईरानियन संस्कृति में सूर्य की उपासना बहुत है और वो अपने हर मूर्ति में सूर्य जैसा बनाते थे, ऐसे सूर्य बनाते थे ईरानियन। उसके बाद का जो पीरियड है इट इज कॉल्ड एज हेलिनिस्टिक पीरियड। हेलिनिस्टिक पीरियड सिकंदर के जाने के बाद से लेके तो ईसा के 30 वर्ष पूर्व तक, ईसा के 300 वर्ष से लेके तो ईसा के 30 वर्ष तक के पीरियड को हेलिनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। तो इट इज डिराइव फ्रॉम द हेलिनिस्टिक पीरियड एंड द ईरानियन फिलोसफी। ईरानियन में उनकी मूर्तियाँ उनके चित्र सब में हेलो दिखाया जाता था क्योंकि वो सोलर डेटीज की पूजा करते थे। और वही फिर भारत के लोग उधर गए, उधर के आर्टिस्ट इधर आए, यहाँ के आर्टिस्ट इधर, उधर के आर्टिस्ट इधर। इस काल में जो भी देवता थे उनको देवता या महापुरुष या अच्छे लोग उनके चेहरे के पीछे एक हेलो निकालना चालू हुआ। परंतु हाँ हेलो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, एक कोई एक पर्टिकुलर काल नहीं है, पर ये हेलिनिस्टिक पीरियड में ये बनना चालू हुआ है। तो इसको कहते हैं क्या? डबल ताज। वो तो ताज है, वो तो भारत की परंपरा में ही है, परंतु आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग में रवि वर्मा की कई सारी सभी पेंटिंग्स में वो दिखाया हुआ है। श्री राम पीछे गोल, श्री कृष्ण गोल, हनुमान जी गोल, फिर सारे जो देवी संत महापुरुष है उनके भी गोल। परंतु ये कोई वास्तव में था क्या ऐसा? ऑरा दिखता थोड़ी ना, और ऑरा सबको नहीं दिखता है, किसी किसी को दिखता है। तो प्रश्न क्या था? डबल लाइट, डबल ताज, डबल पवित्र, श्रेष्ठ भाग्यवान। दूसरा प्रश्न, डबल ब्राह्मण आत्मा है, डबल होली कैसे बनती है? आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र। अगला प्रश्न, डबल पवित्र बनने का फल क्या है? डबल ताज और 21 जन्मों का श्रेष्ठ राज। हमारी होली और दुनिया की होली में क्या अंतर है? उसकी स्थूल, हमारी सूक्ष्म। एक मिनट आशीष भाई, 10 उत्तर बताओ। माइक दे दो, जल्दी दे दो। संसार की होली और हमारी होली में क्या अंतर है? जल्दी बताओ।
वहाँ स्थूल रंग लगा,
वहाँ स्थूल, यहाँ सूक्ष्म।
और वहाँ स्थूल रंग से स्किन को,
वो एक रंग में सब आ गए। दूसरा पॉइंट, एक रंग का पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वहाँ लकड़ियाँ जलाते हैं, यहाँ संस्कार जलाए जाते हैं। वहाँ लकड़ी, यहाँ संस्कार। वहाँ मिठाई बांटते हैं और यहाँ यहाँ क्या? या मनुष्य, वहाँ मनुष्य के साथ, यहाँ भगवान के साथ। और वो हो गया, मिठाई इधर भी है उधर भी है। सिमिलैरिटीज नहीं, डिफरेंस बताने। यहाँ लौक, वहाँ लौकिकता, यहाँ रूहानियत। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है।
एक दिन का, वहाँ एक दिन का है, यहाँ पे तो
यहाँ हर दिन होली, हर दिन दिवाली। यहाँ रोज रोज होली है, रोज रोज दिवाली,
हर सेकंड हर घड़ी।
यहाँ हमारी दिवाली होली है, दिवाली होली है, होली दिवाली है, दिवाली रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन नया वर्ष है, नया वर्ष शिवरात्रि है, सब एक है। हर दिन यहाँ उत्सव है। तुको बाचे राज्य आम महानित दीपावली। हर दिन यहाँ होली है, हर दिन यहाँ दिवाली। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो भी तो इंतजार करते हैं, जबरदस्ती तो नहीं मनाते। वहां वहां क्या होते हैं? खेलते हैं, यहाँ बनते हैं।
वहां वहां संस्कारों का नाश, यहाँ संस्कारों की रास।
हाँ, वहां
वहां संस्कारों का नाश, यहाँ संस्कारों की रास।
और
वहां नुकसान है, यहाँ फायदे।
वहां नुकसान, यहाँ फायदे।
खर्चा होता है, यहाँ फ्री में सब।
वहां खर्चा, इधर फ्री। और
वहाँ भंग का नशा, यहाँ प्रभु प्रेम का नशा।
वहाँ किसका नशा?
भंग, भंग,
भांग का भांग। नशा। यहाँ प्रभु प्रेम का नशा। और वहाँ साल में एक बार मनाते हैं। और यहाँ निखर जाते हैं, वहाँ जल कर राखो। और हाँ, वहाँ बीती को बीती नहीं होती है उस होली में। वो एक एक कर्मकांड है।
वहाँ होली में झगड़ा लड़ाई भी शुरू हो जाता है।
हाँ, कीचड़ साफ हो जाता है।
कीचड़ में डाल देते लोगों को पकड़।
दुश्मनी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि आज होली है बोल देते।
उत्तर, दुनिया स्थूल रंग लगाती है, ब्राह्मण परमात्मा संघ का रंग लगाते। नेक्स्ट, होली का वास्तविक अर्थ क्या है? बीती सो बीती, पुरानी बातों पर पूर्ण विराम। बाबा ने फुल स्टॉप शब्द का प्रयोग किया है, पूर्ण विराम नहीं किया कभी भी। क्यों किया है? इंग्लिश शब्द का प्रयोग क्यों किया है? बताया था ना उस दिन, इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट है, हिंदी का फुल स्टॉप ऐसा है, लाइन है। हिंदी का फुल स्टॉप ऐसा है ना, पर इंग्लिश का डॉट है, इसलिए उसने फुल स्टॉप ही रखा। लगाना इजी है। बीती बातों को याद करने से क्या हानि होती है? दीपाली बहन, पांच कारण बताओ। नहीं, हाँ, पांच हानियां बताओ। स्टार्ट।
व्यर्थ संकल्प,
एक।
नेगेटिव,
दो।
बस में मनमुटाव,
तीन।
शक्ति चली जाती है
कहाँ?
टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और उसी में घूमते रहते हैं, मतलब बाहर निकलने का।
तो बीती बातों को याद करते तो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह
नहीं जीता,
वो पास्ट में जीता
और जलता रहता है
और दुखी होते रहता है। अगर बीती पुरानी खराब बातें हैं तो याद आते रहती
है। अपने भाग्य
अगर बहुत अच्छे पल थे तो वो कितने भी अच्छे पल हो पर वो इस समय यहाँ नहीं है ना, वो उस ढूंढ रहा है। हम लोग घूमते थे, अरे ठीक है तुम घूमते थे, अभी का अभी क्या।
अपने भाग्य को कोसता रहता
तो व्यर्थ संकल्प बढ़ते और समय तथा संकल्प दोनों व्यर्थ जाते, टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट। और अभी जो यहाँ हो रहा है उस पर फोकस नहीं कर सकते फिर। संगम युग के एक एक मिनट का क्या महत्व है मनी भाई? दोनों माइक से बता दो, एक एक मिनट का क्या महत्व है?
पूरा कल्प का भाग्य
और
अपना उन्नति का स्थिति
एक मिनट अर्थात
परमात्मा संग।
एक मिनट अर्थात कितना? एक वर्ष।
एक वर्ष
21 जन्म, एक मिनट 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है, मुरली में है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को वेस्ट नहीं जाना करना है। इसमें वेस्ट करते हैं ब्राह्मण आत्मा है टाइम वेस्ट, खाने के चिंतन में, क्या बनाना है उसके चिंतन में।
खाने से में तो थोड़ा टाइम वेस्ट,
खाने में टाइम कम जाता है पर उसका चिंतन, उसका मनन, उसका डिस्कशन और खाने के बाद क्या खाया,
उसकी तैयारी,
उसकी टेस्ट कैसी थी, ये टेस्ट इतनी अच्छी नहीं जितनी वो वाली टेस्ट थी। और कंपैरिजन कि वो उनका जो बनाया हुआ था ना वो अच्छा था, ये इतना अच्छा नहीं था, इसमें वो डालना चाहिए था, वो क्यों नहीं डाला उसमें, अरे वो रहता था तो बहुत बढ़िया मजा आ जाता था। पार्टी करो, भट्टी करो, भोजन मस्त है। पिकनिक पर जाओ, भोजन मस्त है। मीटिंग करो, भोजन मस्त है। कॉन्फ्रेंस करो, भोजन मस्त है।
अगर भोजन नहीं होता तो कोई आत्मा नीचे आती नहीं,
वही तो
सारा भोजन का
तो ये केंद्र भोजन है अर्थात बरबर।
भूखे पेट भजन न हो
बाप दादा किस बात की विशेष चेकिंग करने के लिए कहते हैं? क्या हर संकल्प और हर मिनट सफल हो रहा है? क्या हमने टाइम वेस्ट कर दिया? क्या चेकिंग करनी है? हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इसकी चेकिंग करते रहना। नेक्स्ट, प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा कैसे करनी है? शुभ शुद्ध और सतोगुणी मनसा संकल्प द्वारा। तो अपने टाइम टेबल में तीन समय फिक्स करने हैं, सुबह दोपहर और शाम, तीन बार मनसा सेवा करनी। कितनी बार? तीन बार, थ्री टाइम्स कंपलसरी हर एक ने, एक सुबह सुबह, एक दोपहर में और एक शाम को। दोपहर में भी करना है, हैबिट है, इट्स कंडीशनिंग, आपने अगर कर दिया तो वो हो जाएगा। तो थ्री टाइम्स का टारगेट रखना है, थ्री टाइम्स मनसा सेवा, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट, प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा कैसे करनी है, ये हो गया। प्रकृति चित बनने का क्या अर्थ है? प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसे अपने भावी राज्य के योग्य बनाना। तो सभी एक लाइन लिखेंगे डायरी में, प्रिय प्रकृति कॉमा, आगे की लाइन आप कंप्लीट करो। प्रिय प्रकृति, आगे की लाइन खुद कंप्लीट करो, क्या कहना है प्रकृति से। और वो लाइन बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, इसलिए सोच कर लिखो प्रकृति से आपको क्या कहना है। ऐसी वो लाइन हो जिससे प्रकृति पावन हो। हो गया, क्या लिखा सुशील भाई?
प्रिय प्रकृति आओ चले हम अपने मूल स्वभाव में लौट
जाए। आओ चले हम चले मूल स्वभाव में
लौट जाए,
लौट चले। नेक्स्ट अरविंद भाई।
प्रिय प्रकृति आपसे हमारा सृष्टि के आदि काल से श्रेष्ठ संबंध रहा है, आप फिर से उस संबंध को प्रगाढ़ करें।
वाह। नेक्स्ट
प्रिय प्रकृति आप परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हो, आपने हमें परमात्मा की तरह पालना दी है।
नेक्स्ट
ये प्रकृति।
प्रिय प्रकृति आप कितनी वैभवशाली हो, आपके पास जो भी जाता है वो संपन्न बन जाता है।
क्या बन जाता है?
संपन्न बन जाता
है। संपन्न बन जाता है। नेक्स्ट
प्रिय प्रकृति आपका धन्यवाद जो आपने हमें सुधावा।
वाह। तो प्रकृति का धन्यवाद। एक्चुअली प्रकृति जीत शब्द व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। प्रकृति हमारा मित्र है, प्रकृति हमारी मित्र है, प्रकृति हमारे साथी है। उसको धन्यवाद दो, उसकी केयर करो, उसका ध्यान रखो, उसको सकाश दो, उसको उसको खराब नहीं करो, उसको दूषित नहीं करो, उसकी महिमा करो। वो हमारी माँ है, उसको जीतना नहीं है, उसके साथ दोस्ती करनी है। हाँ, उसमें जीतना एक दुश्मन का भाव क्रिएट करता है। हाँ, उसके प्रति हीन, उसको दासी बनाना, ये सब शब्द जो है ना अच्छे नहीं लगते। प्रकृति से प्रकृति प्रेमी बनना है। प्रकृति एक लाइन। हाँ, प्रिय प्रकृति की आगे की लाइन। प्रिय प्रकृति ऑन नहीं है, माइक बंद है। ठीक है। चिमन भाई कुछ कह रहे थे।
प्रिय प्रकृति सत्व प्रधान है तो सारी सृष्टि सत्व प्रधान बन जाए।
नेक्स्ट
प्रिय प्रकृति हमें शुद्ध जल हवा देती है।
प्रिय प्रकृति शुक्रिया पूरे कल्प कल्प शरीर को पोषण देने।
अरे वाह।
प्रिय प्रकृति आपको सत सत नमन वंदे।
प्रिय प्रकृति माँ
प्रिय प्रकृति सदा रंग बिरंगे फूलों से महकती।
प्रिय प्रकृति माँ आपको कोटि कोटि नमन जो आप हमारी इतनी सुंदर पावरफुल पालना कर रही हैं।
और भी किसको बोलना है?
प्रिय प्रकृति आपने सदा पुरुषार्थ करने के लिए आपने योगदान दिया। जब भी प्रकृति में बैठकर याद करते हैं तो आपका काफी योगदान मिलता है, याद सहज हो जाती है करना।
और
हमने लिखा था
क्या? और
प्रिय प्रकृति आप सुखदाई हैं, आपका धन्यवाद।
और
लिखा था
प्रिय प्रकृति हमसे तुम हो, तुमसे हम हैं, निश्चिंत रहो, अब बाप आया है, हम सबको सत्व प्रधान बनना है।
हम बने तुम बने एक दूजे के लिए।
प्रिय प्रकृति आप हमारा साथ निभाती हो, माँ जैसी पालना करती हो, गोद में बिठाती हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रिय प्रकृति आपने हमें मौन सिखाया है, इसके लिए धन्यवाद।
प्रिय प्रकृति आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे कल्प संसार को दिया है, आप देने के लिए प्रसिद्ध हैं।
प्रिय प्रकृति आपने हमें बहुत से अनुपम पदार्थ दिए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी पावनता और शुद्धता की कामना करती हूँ।
तो ऐसे सब लोग एक लाइन दिन में अच्छी और कोई लाइन हो तो लिखनी है। तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर अपने भावी राज्य के योग्य बनाने। वर्तमान प्राकृतिक आपदाओं को बाप दादा कैसे देखते हैं? वे बड़े परिवर्तनों की प्रारंभिक झलक है। आपदाओं के समय ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य क्या है? निर्भय रहना और दुखी आत्माओं को सकाश देना। प्राकृतिक आपदा होने पर हमारा क्या कर्तव्य है? शुभ भावना शुभकामना नहीं, पहले स्थूल बताओ।
सबसे पहले तो स्थूल मदद,
स्थूल मदद। अभी लेटेस्ट दिल्ली में एक 30 साल का युवक था, पीयूष पाल, वो फिल्म मेकर था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था बहुत अच्छी अच्छी अच्छी। वो जा रहा था पंचशील चौक या मार्ग, पंचशील मार्ग दिल्ली में, रात के लगभग 9:30-10 बजे थे, और अचानक और बहुत धीरे जा रहा था और बराबर साइड से जा रहा था, और हेलमेट सब उसकी पहनने की आदत थी, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा था। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी टकरा गई और वो घायल हो गया। ये लगभग हुआ 9:30 to 9:45, और आधा घंटा तक वो वहीं पड़ा रहा। लोग सेल्फी लेते रहे, लोग वीडियोस बनाते रहे। पुलिस आई लगभग 10:30 बजे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में लगभग आधा घंटा से पौन घंटा लेट हुआ। यहाँ तक कि जब घर वालों ने कॉल किया तो फ़ोन चालू और फिर बंद हो गया। तो उसका फ़ोन, उसका कैमरा, वो जो कैमरा जिससे वो शूटिंग करता था, वो सारा चोरी हो गया। फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, पर जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक इतना ब्लड लॉस हो गया। दिल्ली का हॉस्पिटल HOD सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गोयल, न्यूरोसर्जन, उन्होंने कहा पेशेंट ने 2 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। हाउ डू यू लुक एट दिस? ये अखबारों में बहुत चर्चा हुई है इसकी, इस इवेंट की। पीयूष पाल 30-year-old यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर, यहाँ वो बातें आई। और उसके दोस्तों ने बताया ये इतना केयरफुल रहता था कि उसके पास हमेशा प्लास्टिक कभी भी यूज़ नहीं करता था, ग्लास की बोतल यूज़ करता था, मतलब हर चीज़ का उसका ध्यान था। तो एक्सीडेंट जो हुआ उसकी गलती से नहीं हुआ, पीछे ने किसी ने उसको ठोकर मार दी और वो चली गई। और पुलिस भी बहुत लेट आई, सबसे मेन लोग वहाँ सेल्फी निकाल रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे और वो ब्लीड हो रहा था। तो ये दिखाया गया एपैथी, कैसे लोग इनसेंसिटिव हो गए। लोग वहां पर वीडियोस बना रहे थे ताकि व्यूज ज्यादा मिले और वो व्यूज बटोर रहे थे, अपने इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर रहे थे। ही वॉज ब्लीडिंग। तो कलयुग का अंत है, अगर वो जल्दी पहुंच गया होता तो शायद बच गया होता, पर नहीं बचा, ही डाइड।
पत्रकारिता में कहानी, अगर कुत्ते ने व्यक्ति को काटा तो वो न्यूज में नहीं आएगा, व्यक्ति ने कुत्ते को काट लिया तो न्यूज में आएगा, तो सनसनी न्यूज चाहिए रहती
है। तो इतना हम ये सब चीजों के पीछे ना चले जाए कि मानवता ही खो जाए, मानवता शर्मसार ना हो जाए। तो यहाँ बात चल रही है प्राकृतिक आपदाएं या फिर अकस्मात आने वाली त्रासदी। तो निर्भय रहना है और दुखी आत्माओं को सकाश देना है, तो मुरली में आया, पर सबसे पहला होता है हेल्प करना उनको। और फिर कोई एक व्यक्ति आता है, क्या नाम था उसका, वो नाम बोस या कुछ, वो आता है और फिर वो उनको पहुँचाता है हॉस्पिटल। पुलिस तो इतनी लेट आती है कि जब तक पुलिस आती है तब तक वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लोग इसी में बिजी थे वहां पर।
लेकिन इधर एक और चीज है, न्यूज वालों में रहमता तो होती है लेकिन TRP और उनके बॉस का प्रेशर रहता है, कभी कभी वो मदद इसलिए भी नहीं करते। तो अंदर से तो रहता है रहम दिल, लेकिन उस समय वो क्या करें, नौकरी खतरे में, अगर न्यूज नहीं देंगे तो। मानवता का,
मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चौथा स्तंभ है मनसा सेवे के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है? प्रतिदिन निश्चित समय निकालकर शुभ भावना और शुभकामना देना। क्या करना है? निश्चित समय, फिक्स टाइम। तो अमृत वेला फिक्स कर दो, इवनिंग तो फिक्स है ही, अब दोपहर का टाइम फिक्स करना है। 3 times विश्व को सकाश देनी है। लेटे लेटे ही सकाश दे दो दोपहर में। बार बार होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए, रिपीट 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 रिपीट। ब्राह्मण का सोमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। हमारे भक्त कौन बनेंगे? जिन्हें हम अपनी शुभ संकल्पों और सकाश द्वारा सहयोग देंगे। फायदा भी है सकाश देने का, कल हमने फायदे गिनाए थे ना, तो ये भी एक है। संस्कार मिलन की रास क्या है? भिन्न संस्कारों के बावजूद शुभ भावना सहयोग से साथ चलना। एक्सेप्टेंस, आत्माओं को स्वीकार करना है, ये ऐसे है। कल एक लेडी ओपीडी में आई थी, तो उन्होंने कहा अभी हम यहीं रहेंगे। हमने कहा आप तो उधर रहते हो ना, डिवोर्स फाइल कर दिया है। क्यों? द हस्बैंड इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब खुद से ही प्यार करने वाला, खुद के बारे में सोचने वाला, खुद के अतिरिक्त तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है। भारत में एक पौधा है ना, नरगिस का झाड़ पता है? नरगिस का झाड़ होता है, वो हमेशा तालाब के पास उगता है। तो नार्सिसिस नाम का एक व्यक्ति था ग्रीक फिलोसॉफी में, उस वो एक बार पानी के पास जाता है, अपनी परछाई देखता है, अपनी परछाई से उसको प्यार हो जाता है और दिन रात वहीं बैठते रहता है, अपने आप को निहारते रहता है जैसे आईने में कोई देखता है। खुद से ही प्रेम करने वाला, खुद के अतिरिक्त तो जो दूसरों का सोचता ही नहीं, उससे, उसका नाम नार्सिसिस था, उससे शब्द निकला नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। उससे भारत में है नरगिस का वृक्ष, प्लांट, वो भी उसके होता है। तो नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो केवल खुद के बारे में सोचते, मैं, दूसरों को खुशी मिल रही है, दुख हो रहा है, अपने मेरे वजह से दुख हो रहा है, ये नहीं सोचते। तो बहन जी ऐसे बता रही थी। तो शुभ भावना और सहयोग से साथ हैं। ब्राह्मण परिवार में किस भावना में सदा रहना है? मेरा परिवार मानकर शुभ भावना और शुभकामना। मधुबन निवासियों को बाप दादा ने कौन सा विशेष लक्ष्य दिया है? लास्ट टर्न से पहले संस्कार मिलन की चिटकी डालकर पूर्ण सफलता प्राप्त करना। ये क्या दिया है? लक्ष्य दिया है। मनसा सेवा अर्थात मनसा से सेवा और चेहरे से भी सेवा। तो सभी ऐसे हंसेंगे, एक दूसरे के बाजू, एक दूसरे को देखकर हंसना है। हंसो, अब उससे पूछो क्या मेरे चेहरे ने सेवा की, पूछो एक दूसरे से। क्या पूछेंगे? क्या मेरे चेहरे ने सेवा की? क्या मेरे चेहरे ने सेवा की, ऐसे पूछो अच्छे से देख के। पहले हंसो, पहले हंसना है, फिर उसको देखना है और फिर पूछना है क्या मेरे चेहरे ने सेवा की। हाँ की, बहुत की, ऐसे बोलो उत्तर में।
बोला जन्मजात से सेवा हो रही है। जन्मजात से ही सेवा हो रही है,
आपका चेहरा ही मुस्कुराता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस पूरी मुरली का मुख्य संदेश क्या है? तो सबसे पहले बताया प्रभु के संग में रंगकर सच्ची होली मनाना। ये होली की मुरलियों में बाबा बार बार वही वही बातें क्यों कहते हैं? हर नहीं, स्टॉक खत्म होने की बात नहीं है ये। भक्ति में एक शब्द है पारायण। पारायण क्या होता है? रामायण का क्या किया जाता है? पाठ। इसका अर्थ ये नहीं कि रामायण लोगों को पता नहीं, पाठ किया जाता है। पाठ अर्थात रिपीट रिपीट रिपीट। पारायण अर्थात रिपीट 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 करना। एक कंपनी का एम्प्लॉय सुबह जल्दी आ जाता है तो बॉस देख लेता है ये जल्दी आया, उसको बुलाता है, अपने कैबिन में बुलाता है, सोचता है इसको ज्ञान सुनाना चाहिए, कभी कभी बॉसेस को होता है ना, अपने जूनियर्स को थोड़ा ज्ञान सुनाऊ तो सुनाता है, देखो अपनी कंपनी को अगर तुमको आगे बढ़ाना है ना तो अपना जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में बार बार बोलते रहना, लोगों से जब मिलते हो ना तो बार बार उस प्रोडक्ट का नाम लेना, रिपीट 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 करते रहना, चाहे वो थक जाए सुनने वाले, पर अपने को अपना जो प्रोडक्ट है कंपनी का उसको बढ़ाना है तो उसकी विधि क्या है, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। जब भी तुम कुछ भी बातें करो दुनिया वालों से, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो अपने बार बार अपने प्रोडक्ट का नाम लेना, तो उससे क्या होता है लोगों के मन में वो घुस जाता है,
वॉशिंग पाउडर निर्मा
हाँ जो भी, तो इसको आप रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में वो बहुत गहरा चला जाएगा। तो वो लास्ट में उससे पूछता है, क्या तुमको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? वो कहता है हाँ समझ में तो आ गया, क्या समझ में आया बोलो? वो कहता है इंक्रीमेंट 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 इंक्रीमेंट, पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ। ये समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझ। कितना अच्छा उदाहरण दिया उसने अपने बॉस को, तो
बॉस भी सोच रहा होगा क्या बता दिया।
तो पहली बात सुनी प्रभु के रंग में रंगना, दूसरा बीती बातों को फुल स्टॉप, ये एक्सेप्टेंस की ग्रीफ रिएक्शन की लास्ट स्टेज तक जल्दी पहुंचना है, नहीं तो जीवन चला जाएगा उसमें। मनसा द्वारा प्रकृति और आत्माओं की सेवा करना, ऐसे हाथ करना है दोनों, और जो धरती तत्व है ना उसको सकाश देना है आंखें बंद करके। धरती में क्या क्या है सोचो, धरती के ऊपर ये धरती, ये हरियाली, ये पहाड़, ये नदियाँ, झरने, प्राणी, सभी जो भी पशु धरती पर है उन सबको सकाश। ओम शांति। शुभ भावना शुभ कामना से संस्कार मिलन की रास, और लास्ट विश्व कल्याणकारी बनकर निर्भय और सहयोगी जीवन जीना। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति।
जो बीत गई सो बात गई,
जो बीत गई सो बात गई,
जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था,
वो डूब गया तो डूब गया,
अंबर के आनंद को देखो ने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, मधुवन की छाती को देखो,
सूखी कितनी इसकी कलियां,
मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, तन मन दे डाला था,
मदिराले का आंगन देखो
कितने प्याले हिल जाते हैं,
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिराले पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मधु लूटा ही करते हैं,
वो कच्चा पीने वाला है,
जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो भी